सी बूंदे अमृत की दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की।
ओम शांति। 2011 इस वर्ष की अंतिम मुरली 31 दिसंबर। पंद्रह बार कल किया था ना? तीस ग्यारह एक मिस हो गई, कल ले लेंगे। उसको कल ले लेंगे। अब ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कहें तो नए वर्ष में बाप दादा का मुख्य वरदान क्या है? चर्चा, चाहे मुरली कोई भी हो, चर्चा जो होनी है वो होगी। नए वर्ष का मुख्य वरदान क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात क्या? तेज चलना। तीव्र पुरुषार्थ क्या? जल्दी जल्दी भागना। तीव्र अर्थात फास्ट। तीव्र अर्थात
तीखा।
तीखा। तीव्र अर्थात शार्प। तीव्र अर्थात
धारदार।
तीव्र अर्थात एक्टिव। तीव्र अर्थात कंटिन्यूस, गहरा। इंटेंस। कम समय में ज्यादा। तीव्र पुरुषार्थ। मन क्या करता है? टालता है। कोशिश करूंगा, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ क्या है?
करना ही
अभी,
है।
अभी करना ही है, नहीं
अभी,
अभी नाउ, आज से, अभी से, ये है तीव्र पुरुषार्थ। नया वर्ष आता है, कैलेंडर बदलता है, पर पुराना क्रोध, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी शिकायतें वहाँ के वहाँ। तो इसको नया वर्ष नहीं कहेंगे। जो चीज़ समझ में आ गई उसे जीवन में उतारने के लिए कल की प्रतीक्षा न करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। जो गलती एक बार हो गई उसे रिपीट न करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। समय पर ज्ञान याद आ जाना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। एक सेकंड में बिंदी लगा देना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, प्रयास, प्रयत्न, एफर्ट, उद्यम। तो निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमारा ग्राफ आगे और फिर पीछे, आगे और पीछे वाला ना हो। अगर हम पीछे जाते हैं तो ये देखना है ऐसी मन ने कौन सी उपलब्धि पाई है। जरूर उसे कुछ प्राप्ति है उस पीछे जाने में, इसलिए वो पीछे जाता है। उसे कोई खुशी है, पुरानी कोई वासनात्मक स्मृति को याद करने में, कोई मजबूरी, कोई खुशी, कोई गुप्त दबाव, पीछे जाता है, रुकता है। टेस्ट है अभी भी उसका। हाथ जल चुका है आग में, फिर से विस्मृति हो जाती है कि ये जलता है, फिर से हाथ उसी में डालते हैं, जबकि पता है इस बार भी जलेगा, फिर भी। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात सीखना, ये संसार एक प्रयोगशाला है, हर घटना एक प्रयोग है जो हमें सिखा रही है। जो घटनाएं हो रही है उन्हें साधना का द्वार बनाना ही तीव्र पुरुषार्थ। हर घटना क्या हो जाए? साधना। जीवन में प्राप्त हर शौक क्या करे? अलर्ट, सजगता। हर चीज कुछ ना कुछ सिखा रही है। माताओं का एक बार क्लास कराया था, बाद में पता चला आधी माताओं को सुनाई नहीं देता है, आधों को हिंदी समझ नहीं आता है, और जो कुछ थी उन्हें क्या सुनाया वो समझ नहीं आया। तो जीवन का प्रत्येक अनुभव क्या करता है? सिखाता है। वक्ता को खुशी हो और सुनने वालों को लगे हम सम्मानित हो रहे तो कुछ बात बने। नए वर्ष में किस पुराने संस्कार को विदाई देनी है? इस मुरली को छोड़कर बता सकते हैं, क्योंकि ये नए वर्ष की मुरली, होली की मुरली, दिवाली की मुरली, शिवरात्रि की मुरली, राखी की मुरली, सेम सेम थीम उसमें क्या होता है? रिपीट। चाहे नए वर्ष हो या कोई भी, तो किसको मिटाना है? व्यर्थ संकल्प, पुरानी नेचर,
स्वभाव, संस्कार को,
नेचर जो बार बार लौटने वाले कमजोर संस्कार, उसको। हमारे पुराने संस्कार है क्या? बार बार दोहराया हुआ चुनाव, हमने जो चुनाव किया था उसको हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। अगर उसको रिपीट ना किया जाए तो वो धीरे धीरे, जैसे व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज ना किया हो तो उसका नंबर कहाँ चला जाता है? नीचे। और फिर एक दिन अचानक मैसेज कर दे तो कहाँ पहुंच जाता है? सबसे ऊपर। वैसे कोई स्मृति, कोई याद, कोई संबंध, कोई रिलेशनशिप, कोई पास्ट अफेयर, कोई पास्ट कमजोरी, दुर्घटना, दर्द, पीड़ा, वो खो गई परंतु अचानक याद आ गई तो ऊपर आ जाती। अब यहाँ क्या करना है? और ये याद आ रही है रात को, तब क्या करोगे? दिन में तो कुछ कर सकते हैं, रात में क्या करेंगे? जैसे आईसीयू में इमरजेंसी किट होता है, वैसे अध्यात्म भी क्या होना चाहिए? इमरजेंसी क्रैश कार्ड, इमरजेंसी हेल्पलाइन, एकदम अचानक बेचैनी, अचानक पैनिक अटैक, अचानक एंग्जाइटी, रात को एक बज रहा है और यहाँ पर व्यक्ति उठता है और बेचैन उठता है, तब क्या किया जाए? कमरे में लोग, कमरे में लोग आराम से सो रहे हैं, क्या करेंगे? उनको उठाएंगे या हॉस्पिटल भागेंगे?
कल जार बनाने का बताया था ना।
जार, वो भी एक टेक्निक है, जार में से कुछ निकालो। एक और क्या करो,
और माफी,
क्षमा याचना आधी रात को किससे, अचानक बेचैनी हुई है, एंग्जाइटी हो गई है, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी अचानक बेचैनी, अत्यंत बेचैन। बेचैनी में ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान दब चुका है उस समय, उस समय कोई तर्क, कोई लॉजिक कुछ काम नहीं करते। बेचैनी, एंग्जाइटी, पाल्पिटेशन, धड़कन।
ये प्रयोग किया हुआ है कि आधी रात को जब ऐसे एंग्जाइटी में नींद खुलती है तो मुरली पढ़ने से फिर वापस वो शांति का अनुभव।
मुरली पढ़ने का ख्याल भी आना चाहिए,
वो आता ही है क्योंकि सीधा बाबा याद आता है।
लॉकेट में क्या क्या, ठंडा पानी, गाना सुनते, पानी पीना, गाना सुनना, स्नान करना, और कुछ,
वो बाथरूम तक जाएगा।
एंग्जाइटी, एंग्जाइटी आ गई तो दो मार्ग, एक वो पाप की तरफ ले जाती है, दूसरा उसको अगर पूर्ण कर दो, अगर नहीं पूरा कर दिया तो वो पाप की तरफ ले जाती है, विकर्म की तरफ, अगर नहीं किया तो बेचैनी बनेगी, अगर उस बेचैनी को पूर्ण कर दिया, कोई विकर्म के लिए बेचैनी है, कोई इमेजिनेशन के लिए बेचैनी है, तो वो बेचैनी बाद में पश्चाताप, बाद में दुख, खालीपन, भारीपन दूसरे दिन, अगर नहीं पूरा किया तो बेचैनी 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 कंटिन्यू होती रहती है, तब क्या किया जाए, दोनों में से कौन सा मार्ग चुना जाए, बेचैनी का या पूरा करके पश्चाताप का। बेचैनी जो है वो ठीक है, क्योंकि बेचैनी अनित्य है, कितना समय चलेगी, एक बार नींद आ गई तो बेचैनी खत्म हो जाएगी, और ये बेचैनी क्यों आई है फिर उसका चिंतन होना चाहिए, अगले दिन ये क्यों आई थी, जरूर दिन में कुछ किया था उसकी वजह से ये बेचैनी आई थी, ऐसे ही नहीं आई बेचैनी, क्योंकि रोज तो नहीं आती ना, कभी कभी आती है, हाँ नए नए प्रकार की, शायद दिन में कुछ सुन लिया जो भीतर चला गया, इसीलिए वो बेचैनी है, इसीलिए इस बेचैनी के स्वभाव को समझना है, ये बेचैनी भी कैसी है, अनित्य है, ये बेचैनी भी टेम्पररी है, ये आई अभी ये चली जाएगी, ये सत्य नहीं है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है, थोड़ी देर के लिए है, ये विलीन हो जाएगी, ये मेरा स्वभाव नहीं है, हाँ इस समय ये सत्य है परंतु स्वभाव ये नहीं है, तो थोड़ा सा साक्षीभाव, थोड़ा सा चिंतन, अगर कुछ लिखा जाए
इसके लिए पहले से अभ्यास करते तो
प्रैक्टिस तब करना है जब कोई तूफान नहीं है, प्रैक्टिस कब करनी है, ये जो मिलिट्री वाले हैं रोज प्रैक्टिस करते, क्यों करते हैं, कोई लड़ाई चल रही है क्या, क्यों भागते हैं, सुबह सुबह देखा होगा ना सब तरफ भागते रहते हैं, क्यों,
दुनिया में कहावत है आग लगे तब कुआं नहीं खोलते,
प्यास प्यास प्यास, हाँ वो भी ठीक,
तुरंत लिखते रहना है, जो भी संकल्प आ रहे हैं ना उसको लिखे ना तो भी फर्क पड़ता है,
इसलिए रात्रि सोने की विधि महत्वपूर्ण है, कैसे सो रहे हैं, तो इस पुराने संस्कार को विदाई देनी है, अपनी पुरानी नेचर, मैं ऐसा ही हूं, मेरी नेचर ही ऐसा है, ऐसी है, ये आत्मज्ञान, ये आलस्य का प्रमाण है, ये मन चालाक है, छल करता है, लोमड़ी से भी चालाक, अत्यंत धूर्त, कहां धोखा देते पता ही नहीं, हम कहते हैं मुझे चीजें जिसे परफेक्शनिज्म कह रहे हैं वो वास्तव में दूसरों को अस्वीकार करने का भाव है. आई रिजेक्ट यू, मैं तुमको स्वीकार नहीं करता. हमें सबको ही स्वीकार करना है. सब इस संसार में ऐसे हजारों लोग हैं जो हमें नहीं मानते, हमारे मत और उनकी उनकी मतें अलग अलग है. इस संस्था से कितने लोग गए और दूसरी संस्थाएं चालू की, उनके प्रति कौन सा भाव है? घृणा, नफरत. ये ड्रामा जो है, इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है. इस संसार में वो भी आत्मा है जो पहले यहां थी अब कहीं और है, पर कर तो सेवा ही रही है. ये तो नहीं कह रहे है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ये तो नहीं कह रही है कि आत्मा सर्वव्यापी है. ढंग अलग अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, परंतु हर एक का अपना अपना मार्ग है इस वर्ल्ड ड्रामा में. इसलिए ये ड्रामा परफेक्ट है. परमात्मा प्रत्यक्षता अलग अलग तरीकों से होगी, हमें नहीं पता. हो सकता है हमने जो समझा है इससे परमात्मा प्रत्यक्षता होगी, उससे होगी नहीं. परमात्मा प्रत्यक्ष अत्यंत गुप्त है, अत्यंत गुप्त. कैसे होगी हमें पता नहीं. उस दिन भी हमने कितनी 8 और 10 बातें निकाली थी जो हम सेवाएं कर रहे, क्या उससे होगी? ये भी एक प्रश्न है. विंग्स के प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, विंग्स की भट्टियां 2, तीसरा ब्राह्मणों की भट्टियां 3, चौथा मीटिंग्स, 5वां बाबा मिलन, शिविर जो करते हैं वो, ट्रेनिंग्स, वीआईपी प्रोग्राम्स, उसके बाद में सेलिब्रेशन, सारे प्रकार के सेलिब्रेशन, समर्पण, बर्थडे, सब डेज. उसके बाद में मीडिया में इंटरव्यू, टॉक शोज, पॉडकास्ट, गीत, डॉक्यूमेंट्री, फिल्में, कमेंट्रीज, ये सारा कुछ, ये सारे कितने लगभग 10 बातें हैं. क्या इन सब 10 बातों से परमात्मा प्रत्यक्षता होगी? ये एक प्रश्न है. या फिर उसके मन में कुछ और ही है. हाँ, ये सारे प्रयास है, माध्यम है, परंतु परमात्मा प्रत्यक्षता कैसे होगी, ये एक अलग ही टॉपिक है. क्लासेस, कमेंट्रीज, फिल्म, इंटरव्यूज, पैनल डिस्कशन, ये सब आ गया, सारी सेवाओं का सार. ऑल 10. मन का शुद्ध भोजन क्या है?
संकल्प.
मन क्या खाता है? शब्द खाता है, दृश्य खाता है, और क्या खाता है? स्मृतियों को खाता है, चर्चाओं को खाता है. मन का भोजन क्या है? बातों को खाता है, कमेंट्स को खाता है, शब्दों को, वाक्यों को, अलग अलग चीजें खाता है. तो व्यर्थ संकल्प को खाता है. व्यर्थ संकल्प अशुद्ध भोजन है. अशुद्ध भावना, तुलना, शिकायत, नकारात्मक चिंतन, अगर ये हमने दिन भर में खाया तो रात में क्या होगी? फिर बेचैनी. हम प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते, परंतु इन सब चीजों को प्रसाद समझकर खाते हैं. निगेटिविटी को, ईर्ष्या को खाते हैं, द्वेष को खाते हैं, जबरदस्ती आते हैं, पर खाना नहीं खाना हमारे हाथ में है. जब भी हल्का भोजन, अर्थात वो भोजन जिससे मन हल्का हो, बुद्धि स्पष्ट हो, हृदय विशाल हो, अगर हम ऐसा खा रहे हैं कि जिससे मन भारी है, बुद्धि में स्पष्टता कम हो रही है और हृदय संकुचित हो रहा है, तो वो भोजन अशुद्ध भोजन है, अशुद्ध भावनाएं, वो सब क्या है? मन का विषय. मन में क्या उत्पन्न करता है? ये बेचैनी, अस्थिरता उत्पन्न होती है। इसलिए उत्तर क्या है? व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध भावना, तुलना, तुलना का भोजन, कंपैरिजन, वो हमसे आगे है, हम उससे पीछे है, सब आगे चले गए, हम पीछे रह गए। शिकायत, कंप्लेंट करते हैं हम, नकारात्मक चिंतन, निगेटिव चिंतन, अगर हम अशुद्ध भोजन खाते हैं बाहर का कुछ तो क्या होता है? एसिडिटी, बदहजमी, इंडाइजेशन, क्या होता है और? गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, भारीपन। अगर मन खराब भोजन खाए तो उसको क्या होगा? अपच, उसको भी बेचैनी होगी। देखना है अपने विचारों की थाली में क्या है, तो एक थाली का चित्र बनाओ। और उसमें दो भाग करेंगे, आधे भाग में पवित्र विचार, प्योर थॉट्स, शुद्ध संकल्प, आधे भाग में अशुद्ध संकल्प या व्यर्थ संकल्प। एक थाली, थाली का चित्र जिसमें दो भाग, एक तरफ शुद्ध, सभी बैठेंगे, निकालेंगे, देखना नहीं है, डायरी में निकालना है। अब सोचो ये मैं खाता हूं तो क्या होता है और ये मैं खाता हूं तो क्या होता है। प्योर थॉट्स खाने से क्या होता है और वेस्ट थॉट्स खाने से क्या होता है? व्यर्थ थकाता है, बहुत दौड़ाता है, थकाता है। कल्पनाओं को फैलाता है, ऊर्जा फैलती है और थकाती है। अगला प्रश्न है, मन का श्रेष्ठ भोजन क्या है? ज्ञान, श्रेष्ठ भोजन, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ संकल्प, दुआएं देना। वो केवल ये कहना नहीं है कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर कोई कठिन व्यक्ति, डिफिकल्ट व्यक्ति को भी आत्मा देखना और ये सोचना कि ये भी तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है या बन जाए। ये नहीं है कि अंधे हो जाना, पर एक भाव है कि जो भी है ये इससे भी आगे जा सकता है। हल्का भोजन, श्रेष्ठ भोजन, अर्थात मन जहां शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसे पौधा होता है उसे सूर्य की आवश्यकता है, उसे इसीलिए मन को भी अर्थपूर्ण चिंतन की आवश्यकता है। क्या चाहिए उसे? एक अर्थपूर्ण चिंतन। हम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं देखता, मुझे तो पता ही नहीं। ऑस्ट्रिच मेंटालिटी उसको कहते हैं अंग्रेजी में, चतुर्मुर्ख जो होता है ना, वो तूफान सब आ रहा है तो अपना मुंह गाड़ देता है, मुझे पता नहीं। बिल्ली होती है ना, दूध पीती है, आंखें बंद कर लेती है, कोई खतरा नहीं है, खतरा ही देखना ही नहीं, आंखें ही बंद कर लिया, मुझे खतरा दिख ही नहीं रहा है। आंखें बंद करना उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है? अर्थपूर्ण चिंतन। हर घटना का हमारे पास क्या हो? एक चिंतन हो। अगर उसका चिंतन हमने नहीं किया तो वो अनप्रोसेस्ड हमारे सबकॉन्शियस में एंट्री कर जाती है। निगेटिव अगर देखा तो निगेटिव वैसे के वैसे घुस जाता है। हमने बीच में फिल्टर नहीं अगर लगाया कि ये घटना है ये निगेटिव है, पर अब मुझे क्या करना है, उसको ले लेना है। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो वो सीधा अंदर चली जाती है। तो ये क्या है? शुद्ध भोजन। तो जो थाली निकाली उसको देखो और सोचो अगर मैंने इधर का खाया तो क्या होता है और मैंने इधर का खाया तो क्या होता है। पुराने संस्कार को समाप्त करने का मुख्य साधन क्या है? दृढ़ संकल्प, जागरूकता, निरंतर अभ्यास। दृढ़ता अर्थात ऐसे दांत भी ऐसे करना है क्या? दांतों को भींचना। दृढ़ता क्या होता है? ऐसे करना। दृढ़ता परिस्थितियां शक्तिशाली नहीं है, हमारे संकल्प कमजोर है। जब हमने देख ही लिया कि इसमें हाथ डालने से हाथ जलता है, फिर हाथ हटाने में संघर्ष नहीं है। उत्तर क्या है? दृढ़ संकल्प। संस्कार हमारे अंदर टिका हुआ है, कोई एक कमी, क्योंकि हम उसका लाभ उठा रहे हैं, उससे हमें फायदा नजर आता है, इसलिए वो नहीं छूट रहा। We love it। हम शिकायत जब करते हैं तो उसके साथ सहानुभूति मिलती है, उस सहानुभूति से हमारा प्यार है मिलती है ना सहानुभूति। अरे अरे तुम्हारे पास ये भी नहीं है, चलो तुमको ये दे देते। जब हम क्रोध करते हैं तो नियंत्रण आता है, सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। तो हमने क्या देख लिया? उसमें दुख से पहचान मिलती है थोड़ी सी। तो संस्कार क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमें उनके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? एक लाभ, एक फायदा, एक सुख, डोपामिन, बड़ा अच्छा लगता है थोड़े देर के लिए, बाद में दुखी होते हैं, परंतु उसमें कोई लाभ है इसलिए वो टिका हुआ है। यदि हम उसे आर पार देख ले तो वो नहीं टिक सकता, फिर हमने उसे थोड़ा सा ढक के रखा है। तो चाहिए एक आशा है, वो दुख के क्षण में जब सब तरफ से दुख मिल जाए तो एक पुरानी याद, उसको लाओ, उसमें रमन करो थोड़ी देर, और उसके साथ दुख भी मिलता है, परंतु बस वो उतना ही देखना, पूरा पूरा नहीं। मूवी जो है उसमें का 5 मिनट का सीन याद करना है बस। इस मूवी ने बहुत कुछ सिखाया और वो सब याद नहीं करते। वो जो दुख वाला सीन है ना उतना याद करना है, या सुख वाला। एक व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो टीसी आता है, कहता है वो तो टिकट किधर है, तो वो अपनी बैग ढूंढता है, फिर ये जेब में हाथ डालता है, फिर इधर के जेब में हाथ डालता है, फिर पीछे के जेब में हाथ डालता है, फिर अपनी दूसरी बैग खोलता है, अपनी टोपी निकाल के देखता है, कहीं पे भी नहीं है टिकट, सब जगह टिकट ही टिकट ढूंढ रहा है। तो वो देखता है टीटी कि तुम ये जो ऊपर का जेब है उसमें क्यों नहीं देख रहे? वो कहते वो मेरा अंतिम वो मेरी अंतिम आशा है, उसमें मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि पहले उसमें देख लिया और उसमें अगर नहीं मिला तो इसलिए मैं सब कुछ देखूंगा। एक व्यक्ति है जो टाइट चप्पल पहनता, इतना टाइट चप्पल जूता, इतना टाइट पहनता कि चुपते रहता है उसको दिन भर ऑफिस में एकदम टाइट, और ऐसे चलते हुए भी उसको तकलीफ होती है। लोग पूछते ऐसा क्यों, बताया जब शाम को घर में जाके उसको निकालता हूं और जो सुख मिलता है तो दिन भर के जो दुख है वो कम हो जाते। अच्छी विधि है ना। पुराने संस्कारों को समाप्त करने का मुख्य साधन क्या है? जागरूकता। से आज तो सोचा था अमृत वेला पावरफुल करूंगा, परंतु नींद आ गई। कोसना नहीं है, अपने आप को दुखी नहीं करना है, अपने आप को ये नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना है, काम किसी और जगह करना है, जागरूकता पर काम करना है, अलर्टनेस को बढ़ा देना है बस। स्पष्ट हो जाना, उसमें फायदा देखना बंद करना है। क्या करना है? पुराने आदत में हम क्या देख रहे हैं, वो टिकी हुई है, मतलब हमारी बिना इच्छा से तो नहीं हो रहा है ना काम, हम चाहते हैं कि वो ना जाए। साथ में भी नहीं रहते, डिवोर्स भी नहीं देते, माँ मेरी माँ। जिस दिन हमें वो छिपा हुआ लाभ दिखाई दे जाए उस दिन रहस्य खुल जाएगा। वो दिन कब आएगा? आज ही हो सकता है। वो छिपा हुआ लाभ हमें दिख जाए, उसमें एक लाभ है और वो बड़ा छिपा हुआ है, बस उस लाभ को देख लेना है तो वो संस्कार से मुक्ति हो जाए। संकल्प करने से नहीं होगा क्यों? अगला प्रश्न, नए वर्ष में किस योग की विशेष आवश्यकता है? ज्वालामुखी योग की। तो उस दिन हमने क्या किया था? आग, आग का क्या किया था? वैरायटी आग देखी थी, अलग अलग प्रकार की आग, अलग अलग प्रकार की आग का चिंतन। तो सभी अभी एक योग का प्रयोग करेंगे, विजुलाइज करना है। कहाँ विजुलाइज करेंगे? यहाँ पर। क्या विजुलाइज करेंगे? आंख बंद करके अलग अलग प्रकार की आंख, हम एक एक शब्द बोलेंगे, जैसे ही वो शब्द आता है उस शब्द का चित्र यहां देखना है और अनुभव करना है। वो आंख के अलग अलग रूप है और अनुभव करना है वो जो लाभ है जो हमें लग रहा है इस संस्कार की वजह से वो जल रहा है। सभी रेडी? आंखें बंद, भ्रुकुटी के मध्य देखेंगे एक मशाल जल रही है, एक मशाल को देखेंगे, मशाल में आग जल रही है। देखेंगे एक दावानल, एक जंगल है, उसे आग लगी है, तेजी से जंगल की आग फैल रही है, आग तीव्र है, प्रचंड है। देखते ही देखते झाड़ झाड़ियां पेड़, देखेंगे एक दीपक जल रहा है, फिर दीपक की लौ को देखेंगे, देखेंगे अंगार, अंगारे धधकते हुए, अंगारे कोयले जल रहे, देखेंगे एक अग्निकुंड, एक यज्ञ कुंड जल रहा है, आग की लपटें उठ रही है ऊपर, देखेंगे एक जलता हुआ घर, एक जलती हुई झोपड़ी, आग उठ रही है, देखेंगे एक ईंटों की भट्टी जल रही है, एक धधकती भट्टी, देखेंगे एक चिता जल रही है शमशान घाट मरघट पर, चिता जल रही है। देखेंगे अग्नि का एक बादल, देखेंगे अग्नि की वर्षा, देखेंगे आकाश में कौंधती हुई बिजली, देखेंगे अग्नि की नदी बह रही है, देखेंगे अग्नि का झरना, अग्नि का गोला, अग्नि के बाण, देखेंगे मोमबत्ती जल रही है, देखेंगे घर में चूल्हा जल रहा है गैस, देखेंगे तपता हुआ लोहा, देखेंगे सूर्य की प्रखर किरणें, दोपहर का सूरज तप रहा है, कुम्हार की भट्टी, देखेंगे एक ट्रेन का इंजन, देखेंगे एक रॉकेट को जो जा रहा है, नीचे अग्नि है, प्रचंड अग्नि, परमाणु ऊर्जा, जेट इंजन, वेल्डिंग की चिंगारी को देखेंगे, देखेंगे सारा संसार जल रहा है प्रलयाग्नि, चारों तरफ आग ही आग है, आग के गोले बरस रहे हैं, आवाजें आ रही है चारों तरफ हाहाकार, लावा निकल रहा है, ज्वालामुखी मुखी योग, सारे विकार, सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, भय, विकार, चिंता, दर्द, स्मृतियां, भोग, आप विकार विकर्म दग्ध हो रहे हैं, राख हो रहे हैं, मैं अग्निवीर हूं, ज्वालामुखी योगी हूं, ढेर सारी अग्नियां हैं। क्या देखना है? अग्नि को जो हमने उस दिन लिस्ट निकाली थी अग्नि की, 50, कितनी लिस्ट थी, 35-40 और भी निकाल सकते, तो परिवर्तन किससे होगा? ज्वाला, जागरूकता की अग्नि, एक गांव था जिसमें निरंतर सत्संग होते रहते थे, हर रोज नया फकीर, नया साधु, नया बाबा बुआ, कोई ना कोई आते ही रहते थे, और ये सबको स्पॉन्सर करने वाला जो था वो सेठ जी थे एक, और वो जो सेठ जी थे हर सभा में बैठते थे, और उनके लिए सामने वाली जो सीट है वो आरक्षित रहती थी, परंतु समस्या ये थी कि वो जैसे सत्संग चालू होता था, नए नए वक्ताओं को बुलाते तो थे पर वो नींद करते थे, पर लोग उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि आयोजक वही थे, फाइनेंस करने वाले वही थे, बुलाने वाले वही थे, कौन उनको कहेगा कुछ? परंतु कभी कभी उनके खर्राटे की आवाज इतनी ज्यादा होती थी कि जो वक्ता और उपदेशक होता था उसे रुकना पड़ता था, वो आते ही सोते थे, और एक बार एक वक्ता ने हिम्मत करके उनसे कहा कि आप सुन रहे हैं ना? उन्होंने कहा हाँ मैं सुन रहा हूं, मैं ध्यान में रहता हूं हमेशा। हर प्रवचन मैं ध्यान में सुनता हूं। उसके बाद ये विषय किसी ने नहीं उठाया और किसी ने हिम्मत नहीं की उनसे कुछ कहने की, क्योंकि वो सेठ जी थे। गोल मटोल थे, बड़ी सी सीट उनके लिए रखी जाती थी, पर वो प्रवचन चालू होते उनके खर्राटों का आवाज वक्ता के आवाज से ज्यादा होता था और सभा कुछ नहीं बोल सकती थी। परंतु एक दिन एक अद्भुत सा वक्ता उस गांव में आया और उसे ये सब पता नहीं था, और उसने देखा कि सेठ जी सोए हुए हैं, तो उसने कहा कि सियान में हूं। प्रवचन फिर आगे बढ़ा। वक्ता ने फिर कहा, सेठ जी आप सो रहे हैं? सेठ जी तो इस समय थोड़े से गुस्से में भी थे, परंतु उन्होंने कहा, कौन सो रहा है, मैं जाग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। प्रवचनकर्ता ने अपना प्रवचन फिर आगे बढ़ाया और फिर कहा कि सेठ जी आप सो रहे हैं? उन्होंने कहा, कौन सो रहा है, आप चालू रखो, मैं सुन रहा हूं। वो फिर सो गए और जोर जोर से खर्राटे लेने लगे। प्रवचनकर्ता ने कहा, सेठ जी आप जागे हुए हैं? उन्होंने कहा, कौन जागा हुआ है। वक्ता ने कहा, मेरा लास्ट टाइम प्रश्न गलत था, अभी सही प्रश्न पूछा। और इतना बोल के वो फिर सो गए और सभा हंस रही थी, पर उन्हें पता नहीं, क्योंकि वो तो चीर निद्रा में खो गए। अध्यात्म अर्थात जागरण, केवल जागरण, काम केवल इसी एक बात पर करना है, होश जागरण। ये बेहोशी ही विस्मृति, बेहोशी विस्मृति, यही गड़बड़ है। जब हम भूल जाते हैं, हो जाते हैं, तब पाप होते हैं, और फिर उसके ऊपर संकल्प करते हैं, आज से ये नहीं करूंगा, आज से वो नहीं करूंगा, ये सारे संकल्प फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करेंगे। और फिर पश्चाताप। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक व्यक्ति है यहाँ से यहाँ जाता है, पूरा होश में आया यहाँ तक, अब उसको कोई पश्चाताप नहीं है, उसका अंतकरण स्वच्छ है, उसे कोई संकल्प नहीं करना पड़ता है। पर एक व्यक्ति है यहाँ से यहाँ आते आते यहाँ पे सो गया, और यहाँ क्या हुआ उसे पता नहीं, और यहाँ फिर सो गया, यहाँ आके फिर उसे चेकिंग करनी पड़ती है अपनी, कि मैंने पाप जो कर दिया वो क्यों किया, और उस पाप के लिए फिर वो क्या करते हैं, आज से नहीं करूंगा, और ये संकल्प फेल हो जाएगा, क्योंकि काम वो कर्म पर कर रहा है, काम करना है केंद्र पर, वो यहां काम कर रहा है, कर्म पर, कर्म पर काम करना ही नहीं है, कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, आज से ये नहीं पीऊंगा, वो नहीं पीऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये सब फेल हो जाते हैं संकल्प। क्यों? नए वर्ष की मुरली है, नए वर्ष में कितने लोग संकल्प करते हैं, वजन घटाएंगे, वॉकिंग करेंगे, जिम में मेंबरशिप एकदम बढ़ जाती है 1 तारीख को, 1 हफ्ता जाते हैं, बाद में सोचते ठीक है। वेट लॉस का सबसे बड़ा टारगेट लेंगे, बाकी कल से परहेज। तो काम ये जो दो हुए, बाकी समय तो हुआ ही नहीं कुछ, जागृति थे, तो काम जागृति पर करना है, कि बेहोश होना ही नहीं है, ये है कार्य। खाली दृढ़ संकल्प करने से नहीं होगा, तो क्या चाहिए? आग, ज्वालामुखी योग, चेतना इतनी तीव्र हो जाए कि झूठ टिक ना सके, ऐसा होश जाग जाए कि बेहोशी टिक ना सके, तो स्वतः ही अपने आप फिर हम पहुंच जाएंगे यहां अंतकरण स्वच्छ। फिर यहां कोई चेकिंग की भी आवश्यकता नहीं, कोई गलती, हाँ चेकिंग करो तो और भी सूक्ष्म परिवर्तन होगा, परंतु लगभग सब कुछ, दिन कैसा रहा, ठीक ठाक रहा, उतना ऐसा पाप नहीं हो गया है कोई। ज्वालामुखी युग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यर्थ विकार पुराने संस्कार को जलाना तथा शक्ति का प्रसार। हम आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, परंतु अगर हमारे भीतर तनाव है तो फिर उसको क्या कहेंगे? व्यवहार में असंतोष दिखाई देता है। अभी अभी भाषण देके आए, शांत कैसे रहे, और घर में जाओ तो रिमोट कंट्रोल के लिए लड़ाई चालू है दो लोगों की, वक्ता और उसकी पत्नी की, तो फिर क्या कहे। सेवा की सर्वोच्च परिभाषा है उपस्थिति। हमारी उपस्थिति क्या हो जाए? सेवा, कुछ कहे बिना, कुछ बोले बिना। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी योग से किन आत्माओं की सेवा करनी है? दुखी, अशांत, भयभीत, निराश, जो आत्माएं टूट चुकी है भीतर से, कुछ भी दिखाई नहीं रह दे रहा है, होप ही नहीं, होपलेस, टोटल जीवन कैसा हो गया है, होपलेस, होप ही नहीं है कोई इससे बाहर भी निकल सकेंगे, इसलिए मनसा सेवा बढ़ानी है। कितनी बार? तीन बार। अगर भूल रहे दोपहर का तो फिर याद करना है, भूल गए ना, फिर से याद करना है। सुबह एक सकाश, दोपहर में एक सकाश, शाम को, उसमें मुख्य रूप से प्रकृति आनी चाहिए और आत्माएं आनी चाहिए। प्रकृति शरीर को भी सकाश देनी है, उस दिन देखा ना, प्रकृति जीत अर्थात शरीर को ही जीतना है, शरीर के संबंध अर्थात शरीर का संपर्क जो हो रहा है विषयों से, इसको शुद्ध करना है। उनमें जो सोई हुई चेतना है उसको जगाना है। हर आत्मा में प्रभु प्रेम है, भरा हुआ है, छिपा हुआ है, दब गया है, ऊपर से नास्तिक दिखता है परंतु वो है नहीं, ऊपर से विरोध करते हैं परंतु अंदर से उन्हें भी प्यास है। अब बाप अमृत वेला बाप दादा ने किस नवीनता पर बल दिया है? केवल बैठने पर नहीं, लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी बनने पर। क्या करना है? लाइट माइट स्वरूप, लाइट और माइट, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर क्या करना है? विश्व को किरणें फैलानी है। तो लाइट हाउस माइट हाउस अर्थात दोनों हाथ ऐसे करेंगे ऊपर और सारे विश्व को, आंखें बंद और सारे विश्व को किरणें देंगे, लाइट की और माइट की, दोनों हाथ ऊपर ऊंचे, ऊपर देखना है, आंखें बंद और अनुभव करो कि मुझसे सारे विश्व को लाइट की और माइट की किरणें जा रही है, मैं लाइट हाउस हूं, मैं माइट हाउस हूं, मैं लाइट का स्तंभ हूं, माइट का स्तंभ हूं, लाइट पिलर, माइट पिलर। हाथ नीचे, ओम शांति। एडवांस पार्टी का मुख्य संदेश क्या है? समय को समीप लाओ, संपन्न बनो, ज्वालामुखी योग को बढ़ाओ। दीदी का मुख्य संकल्प क्या था? अब घर जाना है। दादी का मुख्य संकल्प क्या था? अब कर्मातीत बनना है। ब्रह्मा बाप का अनुसरण कैसे करना है? परिष्ठा स्वरूप, हल्कापन, न्यारापन, प्रेम पूर्वक व्यवहार। इस वर्ष चेहरे से क्या दिखाई देना चाहिए, फरिश्ता स्वरूप शांति करुणा को जलाना और वातावरण में शक्ति फैलाना, ब्राह्मण परिवार के प्रति कैसा व्यवहार रखना है, स्नेही सहयोगी शुभ भावना और अहंकार रहित। प्रत्येक सेंटर की विशेष जिम्मेदारी क्या है, सेंटर प्रत्येक विद्यार्थी को तीव्र पुरुषार्थी बनाना है और सहयोगी बनाना है, इसके लिए क्या करेंगे, हर वीकली प्रोग्राम बनाना चाहिए सेंटर पर, हर वीक एक भट्टी हो, एक दिन माताओं की भट्टी, कभी कभी अधर कुमारों की भट्टी, कभी कुमारों की भट्टी, कभी कन्या कुमारियों की भट्टी, कभी टीचर्स की भट्टी, ये चार प्रकार की मुख्य भट्टियाँ होती है, बच्चों की भट्टी, जो नए आए हैं उनकी भट्टी, जो बुजुर्ग है उनकी भट्टी एक अलग से। बुजुर्ग की भट्टी में पहले ये पूछ लेना सबको सुनाई देता है कि नहीं, नहीं तो बाद में पता चलेगा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। टीचर का काम केवल पाठ पढ़ाना नहीं है, जागरण है, जागृत करना। तो वीकली भट्टी का आयोजन किया जा सकता है अपने अनुसार। हर सप्ताह कौन सी विशेष समीक्षा करनी है, तीव्र पुरुषार्थ की वास्तविक रिजल्ट की चेकिंग करनी है। इस वर्ष का मुख्य होमवर्क क्या है, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने का निरंतर अभ्यास। समय के अनुसार किन दो बातों पर विशेष ध्यान देना है, समय और संकल्प। मनुष्य ने समय बचाने के लिए क्या किया, मशीनें बनाई, और जो समय बच गया उसको फिर मोबाइल में लगा रहा है। चक्र समझ में आया? समय बचाने के लिए क्या किया, मशीनों का निर्माण किया, गाड़ी निर्माण की ताकि टाइम बच जाए, और जो टाइम बच गया उसको क्या कर रहा है, मोबाइल में लगा रहा है। तो मशीनें और मोबाइल, ये है पूरा सर्किट। इससे तो वो लोग अच्छे थे पुराने, एक गांव में एक नेताजी आए और उन्होंने ऐलान किया कि आज से आपकी गांव, आपका गांव और जो शहर है उसके बीच में एक ट्रेन चालू होगी, तो आपको खुश होने चाहिए, जो पूरा दिन लगता था आपको अब केवल 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। 3 दिन बाद नेताजी फिर आए पूछने के लिए कैसा लग रहा है, सब उदास सब दुखी। वो कहते अब हम करें क्या, पहले अच्छा हमारा दिन जाता था, अब काम जल्दी हो रहा है, अब करना क्या है। और मोबाइल भी नहीं है, हाँ अगर इनको मोबाइल मिल जाए तो ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। दिखाते हैं ना मदर्स डे का चित्र, माताजी बैठी है और सारे लोग अपने अपने हाथ में मोबाइल, ये है मदर्स डे सेलिब्रेशन, वो बेचारी अकेली बैठी है। छोटे होते हैं तो दो बच्चे कहते मेरी माँ, वो कहते मेरी माँ, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर। बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहते तेरी माँ, वो कहते तेरी माँ। तो समय बचाने के लिए मशीन आई और समय बच गया उसको फिर मोबाइल में गवा रहे, ये है विडंबना। इस अव्यक्त मुरली का सार क्या है, तो सार है पुराने संस्कारों को विदाई देना। कैसे देंगे, छिपे हुए फायदे को ढूंढना है कि कुछ तो फायदा है मेरा मन। अगला है ज्वालामुखी योग द्वारा व्यर्थ को जलाना, तो ज्वालामुखी योग की विधि क्या है, अलग अलग प्रकार की आग इमेजिन करना, जितनी हमने अभी की उससे भी कई सारी अलग अलग, दावानल जल रहा है जलता हुआ देखना है, तो फिर वो हम यहाँ विजुअलाइज कर सकते अनुभव कर सकते। फिर फरिश्ता स्वरूप धारणा करना और दुखी आत्माओं को शक्ति देना। केवल नए वर्ष की मुरलियां ना, कैलेंडर बदल रहा है उससे नहीं भाग्य बदलता, क्या करना होगा, संकल्प की दिशा बदलनी होगी। कल प्रश्न पूछा था एक, 9 खजानों में से सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है, नव खजाने नवनिधि, उत्तर क्या था? क्यों? सर्वश्रेष्ठ खजाना संकल्प नहीं है, पवित्रता, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, संतुष्टता, दुआएं, संकल्प, ये थे नौ खजाने। पर इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? उत्तर है नहीं, श्रेष्ठ तो सब है, फिर भी जहां गुण है वहां क्या होगा? ज्ञान होगा। और ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, व्यक्ति के पास ज्ञान हो सकता है पर ज्ञान के साथ तो अहंकार आता है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो बचपन से गुणवान होते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता है फिर भी वो गुणवान होते हैं, उनके हृदय में करुणा होती है। जैसे कोई एक दो व्यक्ति है बहुत ज्ञानी है पर अनाथ बच्चा है, उस अनाथ बच्चे के लिए प्रेम और करुणा किसी में होती है। ज्ञान होने के बाद में भी वो होगा आवश्यक नहीं है, परंतु ज्ञान है परंतु नम्रता नहीं है। ज्ञान अपने आप आ जाएगी, जहां गुणवान व्यक्ति है वहां पर उसके संकल्प भी अपने आप श्रेष्ठ, जहां गुण है वहां समय अपने आप सफल होगा, वहां पाप नहीं होगा। जहां गुणवान है वो संतुष्टता तो गुण का ही एक भाग है,
श्रेष्ठ कर्म करता जाए
वो अपने आप कर्म श्रेष्ठ होंगे उसके, और जहां गुण है वहां पवित्रता स्वतः होगी अपने आप। और गुण संबंधों को जोड़ के रखता है, जरूरी नहीं है कि जहां ज्ञान है वहां संबंध जुड़ा रहे। ज्ञान से तो डिस्कशन होता है, बहस होती है, गुण दिलों को जोड़ता है। आगे क्या? नहीं और कुछ बोला ना आपने, वो नहीं चाहिए, गुणवान बहु चाहिए। जहां गुण है वहां समय अपने आप सफल होगा, गुण संकल्पों को व्यवहार में लाता है। तो अगर देखा जाए एक दृष्टि से तो सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है? गुणों का खजाना। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का, पर गुणवान बहुत होते हैं, बहुत मीठा स्वभाव होता है। ज्ञानियों के 40 साल के ज्ञान के बाद में भी मीठा नहीं हुआ है स्वभाव। परंतु संसार के लोग जो ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, हमारे ओपीडी में यहाँ की नर्सेस आती है, सेंट मैरी, सेंट सोफिया, सोफिया स्कूल की, शांत चित्त, स्थिर, बहुत उनमें जैसे ऐसे दिव्यता झलकती है। ज्ञान अपने साथ अहंकार लाता है, ज्ञान अपने साथ भ्रम लाता है। ज्ञान मैं 40 साल से हूं, मैं 30 साल से हूं, पद ये सब लाता है, मेरी एरिया तुम्हारी एरिया, एरिया में बांधता है, मेरे स्टूडेंट तुम्हारे स्टूडेंट अहंकार में बांधता है, मेरा डिपार्टमेंट तुम्हारा डिपार्टमेंट, मैं इंचार्ज इसमें बांधता है। गुणवान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, गुणवान तो गुप्त रहना चाहता है। गुण सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जहां गुण है वहां पवित्रता है, जहां गुण है वहां श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ कर्म है, जहां गुण है वहां पर सब कुछ संतुष्टता है। दुआएं अपने आप प्राप्त होती है गुणवान को, उसे भागना नहीं पड़ता है, भीख नहीं मांगनी पड़ती अटेंशन की, वहां यूनिटी है अपने आप। और लोग ये देखते हैं कि आप लोग कितने आध्यात्मिक हो, ये नहीं देखेंगे। अगर बाहर का कोई व्यक्ति आया उसको कोई जरूरत है किसी चीज की, वो ये देखेगा किसने मेरी मदद की, वो ये नहीं देखेगा ये कितने साल से इंचार्ज है, ज्ञान में है, क्या है, क्या पहनता है, बैच छोटा है बड़ा है, क्या है, सोने का है सिल्वर का है, क्या है, वो सब नहीं देखते, उनको तो पता ही नहीं है सब। वो केवल ये देखते हैं, मेरी मनमोहिनी में रुके थे और वो एक भाई ने उनको, उसको तो पता ही नहीं है कौन है, वो बस निकल गई, उन्होंने उसको अपना साइकिल के डंडे में बिठाया, साइकिल के पुलिस उनको क्या पता ये कौन है। उन्होंने कहा कि मेरी बस छूट गई, बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। डंडे में बिठाया, उनका बैग पीछे बांधा साइकिल में और वो लेके गया उधर शांतिवन में पहुंचा दिया। कितने सुख मिला होगा उनको, कमिश्नर साहब को। उनके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, वीआईपी लोगों को सुख कहाँ है। अकेले घूम सकते हैं क्या कोई नेता कोई वीआईपी? उसको प्रकृति देखनी है, चलो मैं जरा घूम के आता हूँ। सेलिब्रिटीज घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकते। वो यात्रा करने के बाद, साइकिल यात्रा करने के बाद वो कॉन्फ्रेंस के सारे लेक्चर भूल गए। इतना भोला, इतना मतलब भोलापन, ये व्यक्तियों को ये गुण ज्यादा प्रभावित करते। अगर वो आत्मा परमात्मा सुनाते सुनाते गया होता तो ड्रामा है, चलो गाड़ी छूट गई, ये सब नहीं सुनाया उसने। वो कुछ ज्ञान सुनाया नहीं, बस ले गया बस। तो गुण सर्वश्रेष्ठ खजाना है। ओम शांति।
चिंतन 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 कर चिंतन, मंथन 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 कर मंथन। पावन हो सृष्टि का कण कण, स्व अलंकार का चिंतन हर दिन।
दक्षताओं का चिंतन हो चिंतन मंगलम। मन की शिव बाबा का स्मरण।